वो खुश होते हुए अपने भाई बहनों के लिए ताज़ा और अच्छा खाना लेकर उस पेड़ के नीचे जाने लगा जहाँ पर वो अपने भाई बहनों को लेकर रहता था। पर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने देखा कि कीर्ति और पृथ्वी के हाथ पैर बांधकर उन्हें एक कोने पर बिठा दिया गया है और दो शराबी प्रणाली के कपड़े उतारकर उसे अपने सामने नाचने के लिए कह रहे थे। प्रणाली इस समय बिना कपड़ों के खड़ी थी और वो उन शराबियों के सामने रोते हुए अपने हाथ पैर हिलाकर नाच रही थी और वो दोनों शराबी प्रणाली के सीने पर और उसके पीछे हाथ मारते हुए गंदी तरह से हंस रहे थे। आस्तीक के हाथों में जो खाने का पैकेट था वो छूट जाता है और सारा खाना नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। आस्तीक अपने पास में रखे हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस आदमी के सर पर दे मारता है। उस आदमी का सर वहीं फूट जाता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। दूसरा आदमी जब आस्तीक को देखता है तो वो डर से पीछे हो जाता है, क्योंकि इस समय आस्तीक कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि ये पहली बार था जब आस्तीक एक मॉन्स्टर की तरह सामने आया था। आस्तीक ने दूसरा पत्थर उठाया और उस आदमी की तरफ भागा। वो आदमी बहुत स्पीड से भाग रहा था, लेकिन शायद आज मॉन्स्टर के हाथों से बचना उसके बस की बात नहीं थी। आस्तीक पूरी जान लगाकर भागता है और उस आदमी के सर पर पत्थर दे मारता है। वो आदमी वहीं सड़क पर अपना दम तोड़ देता है। आस्तीक को एहसास हो गया था कि उसने खून किया है और कानून उसे सज़ा ज़रूर देगी, इसीलिए ये शहर अब उसके लिए सही नहीं है। वो जल्दी से अपने भाई बहनों के पास आता है और उनको लेकर वहाँ से किसी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठ जाता है। अपनी केबिन की कुर्सी पर बैठा हुआ आस्तीक अचानक से अपनी आँखें बंद करता है और उसकी आँखों से आंसुओं की धार उसके गालों पर आ जाती है। आज उसने अपने उन बुरे दिनों को याद किया था जिसे वो दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता था। इस दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं था कि आस्तीक शुरू से ही बुरा था या उसने अच्छा बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन कदम कदम पर उसे ऐसे लोग मिलते रहे जिसने उसके अंदर एक नए मॉन्स्टर को जन्म दिया। अंत में आस्तीक ने भी ये फैसला कर लिया कि जब ये दुनिया उसे एक मॉन्स्टर बनाने पर तुली ही है तो क्यों ना इस दुनिया को दिखा ही दिया जाए कि असली मॉन्स्टर होता क्या है। अपनी माँ की बेइज्जती और उनका अपमान, अपने भाई बहनों की तड़प, आस्तीक इन सबसे अकेला ही डील कर रहा था। आस्तीक के मॉन्स्टर बनने के सफ़र में अगर किसी ने उसे बहुत करीब से जाना था तो वो प्रणाली थी। इसीलिए प्रणाली को अच्छी तरह से पता था कि उसका भाई कभी गलत नहीं हो सकता है। जो दुनिया ने उसे दिया है वही वो उस दुनिया को वापस कर रहा है। पृथ्वी और कीर्ति तो बहुत छोटे थे, लेकिन आस्तीक ने कभी उनके ऊपर इस दुनिया की क्रूरता का असर नहीं पड़ने दिया। आखिर उसने अपनी माँ से वादा किया था कि अपने भाई बहनों का भाई नहीं बल्कि पिता बनकर उनकी रक्षा करेगा। आस्तीक अपने जीवन के उन दिनों को याद कर रहा था जब वो एक बच्चे से एक मॉन्स्टर बन गया था। तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजता है। वो देखता है तो महल से सुरक्षा अधिकारी का फ़ोन था। सुरक्षा अधिकारी उसे बिना किसी कारणवश फ़ोन नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरी होने पर ही आस्तीक को फ़ोन किया जाता है। आस्तीक ने जब उनका नंबर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ज़रूर कोई बात हुई है तभी फ़ोन किया गया है। वो जल्दी से फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या बात है? सामने से कोई कुछ कहता है और उसे सुनकर आस्तीक का चेहरा गुस्से से भर जाता है। आस्तीक अपनी जगह पर खड़ा होता है और गुस्से से टेबल पर एक हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ़, तुमने उसे जाने कैसे दिया? रॉयल गार्ड्स कुछ कहते हैं। आस्तीक अपना फ़ोन काट देता है और गुस्से में अपने बाल पकड़ लेता है। अरुणिमा घर छोड़कर जा चुकी थी। आस्तीक को इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उस लड़की ने फिर से आस्तीक की बात ना मानकर गलती की है। आस्तीक अपने मन में सोचता है, ये तुमने बहुत गलत किया है अरुणिमा, अब देखना इसकी तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। आस्तीक अपना कोट लेता है और तुरंत रॉयल ऑफिस से निकल जाता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि अरुणिमा कहाँ गई होगी। शारदा जी अभी अभी घर लौटी थीं। वो काम से बहुत ज़्यादा थक कर घर लौटी थीं और तुरंत कुर्सी पर बैठकर उन्होंने ही पिया था। वो कल से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। मिश्री को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि शारदा जी ने पिछले 2 महीने से मिश्री के स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है। मिश्री के बोर्ड के एग्ज़ाम थे इस साल और इस तरीके से स्कूल से निकल जाने पर उसका पूरा साल ख़राब हो गया है। कल से मिश्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और शारदा जी उसे समझा रही थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। शारदा जी ने प्रताप से मदद मांगने की सोची, लेकिन प्रताप तो जैसे अचानक से ही कहीं गायब हो गया है। उसने कई बार प्रताप को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन ना तो प्रताप का फ़ोन लग रहा था और ना ही उसकी कोई खबर थी। शारदा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो अपनी इस हालात पर खुद ही तरस खा रही थी। कहाँ एक वक्त पर वो इतने बड़े प्रिंटिंग प्रेस की मालकिन थी और अब वो एक सफाई वाली का काम कर रही हैं। शारदा जी को पता है कि उनके इस बुरी हालात के पीछे कहीं ना कहीं आस्तीक का हाथ है, लेकिन उनकी दुविधा तो देखो, वो अपने इस दुख को किसी से बयान भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आसपास के सभी लोग अब ये जान चुके थे कि अरुणिमा की शादी राजा साहब से हुई है। सब लोग शारदा जी से यही कहते थे कि राजा के घर में बेटी ब्याही है तो अब इनके भी मौज होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता, उनके घर तो भूखे मरने के दिन हैं। लेकिन शारदा जी उन सबके सामने अपनी स्थिति नहीं बता सकती थी, इसीलिए खुद की स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वो दिखावा करने लगी है। वो आज भी अपनी महंगी साड़ियां पहनकर ही ऑफिस जाती हैं और ऑफिस के वॉशरूम में जाकर उन्हें बदल लेती हैं।